नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चाद्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजान् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत् व्रतमिदां द्वादशाहमतन्द्रिता। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजान् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद् व्रतमिदां द्वादशाहमतन्द्रिता।
तो चलो करें, आवृत्ति करने में फिर बहुत टाइम लगेगा ना। ठीक।
श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार पहले जैसा कहा गया उक्ता कहे जाने पर सा वह अदिति देवमाता अदिति राजन हे महाराज परीक्षित स्वभर्त्रा अपने पति के द्वारा कश्यपेना कश्यप जी के द्वारा वही निश्चित अनु अतिष्ठत लग गई अपने पति की आज्ञा के अनुसार लग गई व्रतम इदम इस व्रत में द्वादशाहम 12 दिनों तक अतंद्रिता बिना आलस्य के आज कथा 9 बजे तक चलेगी। बीच में श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य श्री समीक ऋषिदास कल नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे वहां दिल्ली, तो इसीलिए उनको आज अवसर दिया जाएगा अनुमोदन का। तो सब मिलाकर के प्रोग्राम 9 बजे तक चलेगा। 9 बजे से पहले कोई ना उठे, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ऐसे ही समय बहुत हो गया है। तो कल तक यह कथा हुई थी कि श्री कश्यप जी ने अपनी पत्नी माता अदिति को किस किस प्रकार पयोव्रत का उपदेश किया और पयोव्रत की महिमा का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा दान है, और किसी भी विषय में यह सबसे बढ़ करके है, और इसको सर्व यज्ञ सर्व व्रत कहा जाता है। कल इसकी कथा हुई थी। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्युक्ता सादिति राजन स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत व्रतमिदम द्वादशाहम अतन्द्रिता।
स्वभर्त्रा कश्यपेन भाई, एक तो भगवान का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत पयोव्रत, और दूसरे परम हितैषी अपने पति देव के द्वारा उपदेश हुआ अपनी पत्नी को करने के लिए। अतः अपने पति देव कश्यप जी की बात को अदिति ने खूब अच्छा तरह से अतंद्रिता सदा सावधान रह करके आलस छोड़ करके करने लगी, यह व्रत करने लगी 12 दिन तक की। किस प्रकार अदिति एक पूर्ण साधक की तरह भगवान के भजन में लगी है, श्रील सुखदेव को स्वामी वर्णन करते हैं। चिंतयन्ते कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम् प्रगृह्येन्द्रिय दुष्टास्वान् मनसा बुद्धिसारथिः। अदिति सबसे पहले अपने बुद्धि को सारथी बना करके, अर्थात नियंत्रण करने वाला, अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि से अदिति ने दुष्ट इंद्रिय रूप घोड़ों को वश में किया। देखिए बहुत सुंदर वर्णन है, कोई भी साधक भगवान का तो युद्ध भूमि में है तो सबसे पहले उसे अपने दूषित इंद्रियों को नियंत्रण में करना चाहिए। तो माता अदिति अपने बुद्धि सारथी, बुद्धि को ही सारथी बनाया। सारथी जो रथ पर आगे बैठा रहता है, जो घोड़ों को कंट्रोल करता है, बुद्धि सारथी, बुद्धि ही जिसका सारथी था, उस अदिति ने अपने बुद्धि द्वारा प्रगृह इंद्रिय दुष्ट अश्वन, अपने इंद्रियों को जो दुष्ट अश्व की तरह थे वश में किया। ये ध्यान रखना चाहिए कि माता अदिति की इंद्रियां दूषित नहीं थी, यह सामान्य रीति बताई जा रही है कि इस तरह से पहले मन को वश में करना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। खूब तैयार हो गई। अब इससे आप समझ सकते हैं, जैसे एक महायुद्ध में कोई महारथी प्रवेश कर रहा है तो उसको बहुत जरूरी होता है इस बात का कि वह घोड़ों को अपने वश में रखे। तो महारथी घोड़ों को वश में करता है सारथी के द्वारा, नहीं तो घोड़े यदि दुष्ट हैं तो रथ को ले जाकर के खाई में भी गिरा सकते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करना। जीवात्मा को विषय भोगों में जो इंद्रियां लगा रही हैं वो उनकी उपमा दुष्ट घोड़े से दी गई है, दुष्ट अश्वान। तो माता अदिति ने एक महारथी की तरह सदा सावधान होकर के भगवान का चरण कमल पाने के लिए वह पहले इंद्रियों को वश में की। प्रगृह इंद्रिय दुष्ट अश्वान मनसा बुद्धि सारथी, और इस तरह से एकाग्र बुद्धि से चिंतयन्ति महापुरुषम ईश्वरम। महापुरुष भगवान विष्णु को महापुरुष कहते हैं, उनका शरीर विलक्षण है, भगवान के भुजाएं आजानुलंबित हैं, चरण में हाथ में तलवे में विशेष चिन्ह है, और चरण और हाथ बिल्कुल कमल की तरह सुकुमार है, सुंदर है, उनसे सुगंध निकलती है। भगवान की छाती, भगवान का नाभि, कंठ, सिर अद्भुत है, तो इस कारण से भी उनको महापुरुष कहते हैं। श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी ने अपने नाती चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा था कि इसमें सब महापुरुष का लक्षण है, मतलब भगवान का लक्षण है। निमाई में भगवान चैतन्य महाप्रभु बचपन में उन्होंने कहा कि इसमें तो सब भगवान विष्णु के लक्षण है, उनको महापुरुष कहते हैं। और वैसे भी महापुरुष शब्द के अनेक अर्थ हैं कि वे इस विश्व के महान भक्ता हैं, इंजॉयर हैं और सब तरह से परिपूर्ण हैं। तो अदिति अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके महापुरुषम ईश्वरम, जो समस्त जगत के नियंता हैं, पालन करता है, सबको कंट्रोल में रखते हैं, ऐसे भगवान का चिंतन करने लगी। यद्यपि इसके पहले भगवान के रूप का वर्णन केवल 2-3 श्लोक में हुआ है, गुणों का वर्णन ज्यादा हुआ था, परंतु पहले के लोग इतने
भगवान के बारे में जानते थे कि अगर ये कहा गया कि भगवान का चिंतन करो तो उसका मतलब भगवान विष्णु होता ही था। आजकल जैसा कल्पना नहीं है, भगवान का भजन करो और तुम अपने मन में जिसको भी भगवान मान लोगे वही चिंतन करो। ये कैसे हो सकता है? किसी कुत्ता का कोई ध्यान करने लगे इंद्रियों को वश में करके, ये कोई ध्यान है? मानने से क्या होगा? भगवान का ध्यान होना चाहिए। तो माता अदिति ईश्वर का ध्यान कर रही थी, महापुरुष भगवान विष्णु का। किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उसके साधना का वर्णन कर रहे हैं, सावधान होकर, और उपमा दे रहे हैं किसी महायुद्ध में प्रवृत्त महारथी के समान। बड़ो ही कठिन है भजन ढीग ढरी वो। भजन करना वास्तव में बहुत कठिन काम है। सूर कैसो लरिबो सती जैसो जरिबो। जैसे सूर व्यक्ति बड़ा वीर है, युद्ध में जाता है तो शत्रुओं का बाण सामने सह लेता है और शरीर भी छोड़ देता है कभी कभी, यह विजयी होता है। तो वह बाण आ रहा है विपक्ष का तो वह उसे घबराता नहीं है, यह नहीं कि भाग जाए युद्ध छोड़कर। जैसे वो वीर युद्ध में खड़ा रहता है, ऐसे भक्त को, विष्णु भक्त को खड़ा रहना चाहिए साधना में। और सती जैसे जरी वो, सती स्त्री, परम पतिव्रता स्त्री अपने पति के निधन होने पर उसके साथ जल जाती है। आग की लपटें चारों तरफ चिता में रहती हैं, अंगार लपट, लेकिन अपने पति को गोद में लेकर के वह बैठती है चिता पर, धू धू करके चिता जलती है लपटे, लेकिन वो लपटे आग की उसको कमल के पत्तों की तरह शीतल लगती है आग। कभी ऐसा नहीं कि उठ करके भाग जाए और छटपटावे ये करे, वो जानते हैं कि मैं इस तरह से जलूंगी तो पति जो गति प्राप्त कर रहे हैं वो मैं प्राप्त करूंगी, कम से कम स्वर्ग तो निश्चित है। और यदि पति भक्त है तो उसके संग जलने वाली स्त्री निश्चित भगवान का धाम प्राप्त करती। आज के युग में तो ये प्रथा बंद है, अंग्रेजों ने ही कानून बनाकर बंद कर दिया है, और उचित ही है। लेकिन पहले की सती स्त्रियां इस तरह से होती थी, तो जैसे सती स्त्री जलती है और आग के आंचों को सह लेती है, ताप को, खुशी से पति का अनुगमन करती है, सहगमन करती है, इस प्रकार से भजन करना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, बरवई कठिन है भजन ढीग ढरिबो, सूर जैसो लरिबो सती जैसो जरिबो। इस तरह से कहते हैं, कोई बड़ा पद है। तो माता अदिति दृढ़ता के साथ जम गई पयोव्रत करने में, भगवान के आराधना में, चिंतन में, स्तुति पढ़ने में, जप करने में लग गई। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी एक वीर के साथ है उपमा दे रहे हैं। मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारह पयोव्रतम्। और एकाग्र बुद्धि के द्वारा उसने मन को एकाग्र करके, सब ओर से हटा करके, अखिल आत्मा भगवान वासुदेव में, श्री कृष्ण में लगा दिया, पूरा लगा दिया। समाधाय, सम का अर्थ है कंट्रोल करके, वास्तव समाधाय सम और आधाय, सम का अर्थ है सम्यक, ठीक ठीक, पूरा पूरा, जो मन एक सेकंड भी भगवान कृष्ण के चिंतन से बाहर नहीं हो रहा था, इसको समाधान कहते, सम आधा समाधाय। तो अपने मन को एकाग्र बुद्धि से सब जगह से हटा कर उसने भगवान में लगाया, जो परम सुंदर हैं, छह ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, परिपूर्ण हैं छह ऐश्वर्यों से, और जिन्हें वासुदेव कहते हैं। वासुदेव का अर्थ ही होता है जो सबको जन्म दिए हैं, सबको पालते हैं, भगवान वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र, अथवा विशुद्ध सत्व में प्रकट होने वाले, विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम, जो शुद्ध सत्व है जिसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है, अप्राकृत सत्व, उसको वसुदेव कहते हैं। और भगवान वसुदेव स्थिति में ही प्रकट होते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। और दूसरा अर्थ है कि वह वसुदेव जी के पुत्र हैं,
इसलिए वासुदेव है। अखिल आत्मा, समस्त प्राणियों के जो आत्मा है, परमात्मा है, सबके मूल कारण है और सबके हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भगवान का चिंतन करने लगी और जप करने लगी। पूर्ण एकाग्र मन भगवान के रूप में लग गया, चिंतन में लग गया। वाणी से जप होता था, मन बिल्कुल भगवान में रम गया। इस तरह से वासुदेव समाधाय चचार ह पयोव्रतम, वो पयोव्रत करने लगी। सुखदेव गोस्वामी ह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक टीकाकार कहते हैं कि उनको बहुत खुशी हो रही है कि माता अदिति भगवान का भजन इस तरह से करने लगी। तस्या आविर्भूता त भगवानादि पुरुषः पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरः। इस प्रकार जब व्रत की 12 दिन, तस्या प्रादुर्भूता तात हे प्रिय परीक्षित, सुखदेव जी स्नेह से संबोधन कर रहे हैं, हे प्रिय परीक्षित, तस्या माता अदिति के लिए भगवान आदि पुरुष प्रादुः अभवत, तुरंत प्रकट हो गए। तस्या प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुष, आदि पुरुष जिन जो सबके मूल कारण हैं, सब जिनसे जन्म लिए हैं और जिनका कारण कोई नहीं है, और वो सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण वो हैं और स्वयं निष्कारण हैं। भगवान ने विष्णु को, कृष्ण को वास्तव में कोई पैदा नहीं किया है, वो तो कृपा करके किसी भक्त को अपने माँ के रूप में स्वीकार करके उसके गर्भ से प्रकट होते हैं, उनके भी आदि पुरुष हैं। ऐसे आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए, उनके सौंदर्य का, आकार का थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। संस्कृत में एक उपलक्षण शब्द है, थोड़े से वर्णन से ही समझ लेना चाहिए, और सब भगवान के अलंकार आदि। तो कपड़े का वर्णन सबसे पहले कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पीतवासः, पीताम्बर पहने हैं, चतुर्बाहु भगवान की चार भुजाएं हैं, और चार भुजाओं में एक भुजा, एक बाह खाली रखे हैं, शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, और कमल धारण करते हैं भगवान, तो कमल को उसमें धारण नहीं किए थे। एक हाथ से माता अदिति को वरदान देने के लिए प्रकट है, खाली हाथ रखे थे, और शंख चक्र गदा धर, और भगवान अपने युद्ध उत्साह को प्रस्तुत कर रहे थे। युद्ध में जिन चीजों का वे इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को धारण किए थे, शंख चक्र गदा, चक्र के द्वारा, गदा के द्वारा वे असुरों का संहार करते हैं, और शंख के द्वारा उनके हृदय को फाड़ देते हैं, मनोबल कम कर देते हैं ध्वनि से। तो शंख चक्र गदा लेकर के भगवान प्रकट हुए, पीला वस्त्र, और इसके अलावा अपने आप समझ लेना चाहिए, श्याम शरीर, कानों में कुंडल, हाथ में कंगड़ बाज और अंगद, कमर में करधनी, ये सब जो श्रृंगार हैं भगवान का, और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगु जी का चरण चिन्ह, ये सब हैं, अपने आप समझ लेना चाहिए, इसको उपलक्षण कहते हैं। तो भगवान इस तरह माता अदिति के सामने प्रकट हुए। तस्याः प्रादुर्भूतात् भगवान आदि पुरुषः पीतवासश्चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरः तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम ननाम भूविकायेन दंडवत प्रीति विह्वला। तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य, ऐसे प्रभु को, श्री भगवान को अपनी आंखों के का विषय देख करके, मतलब आंखों के सामने आ गए, प्रकट हो गए, सहसा उत्थाय सादरम, तो माता अदिति अकस्मात खड़ी हो गई। वो बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, पर भगवान जब सामने आए, नेत्र गोचरम तम वीक्ष, नेत्र गोचरम वीक्ष, भगवान को सामने देख करके सहसा उत्थाय अकस्मात खड़ी हो गई। भगवान सामने खड़े हैं, प्रकट हैं, तो माता अदिति सकपका गई भगवान को देख करके, बहुत आनंद हुआ,
लेकिन वो अब सोचने लगे मैं किस तरह से पूजा करूं, क्या करूं, क्या करूं। पूजा तो किया था 12 दिन उन्हीं भगवान का जो प्रकट हुए हैं। जो न समझी बस कम बुद्धि होने के कारण ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उन लोगों को ये सब चीज पढ़ना चाहिए। नेत्र गोचरम, आंखों के विषय बने, भगवान दिखाई पड़े खूब अच्छा से। तो माता अदिति खड़ी हो गई सादरम, परम आदर के साथ, और ननाम भूमि काय न, अपने शरीर से काया से भूमि पर प्रणाम किया। कैसा दंडवत प्रीति भी वाला, भगवान के प्रति अतिशय प्रेम उमड़ा और प्रेम से वो बिहवल हो गई, व्याकुल हो गई। वी का अर्थ होता है विगत, होलम का अर्थ होता है चाल, चलना, स्पंदन। एकदम अवाक हो गई, वाणी नहीं निकल रही थी, विकल हो गई और दंडवत प्रणाम किया। दंड का अर्थ होता है डंडा और वत माने जैसा। यदि डंडे को आप खड़ा कीजिए जैसे दंड है और इसको छोड़ेंगे तो सीधा गिरेगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं। इस प्रणाम को दंडवत प्रणाम कहते हैं। और इसमें जब अष्ट अंग लगाया जाता है, साष्टांग प्रणाम, तो उसका अर्थशास्त्र में किया गया है सिर से प्रणाम, हाथ से प्रणाम, वक्षस्थल से प्रणाम और घुटनों से प्रणाम, चरण से प्रणाम। चरण से भी प्रणाम किया जाता है, पर चरण का प्रणाम क्या है, चरण को पीछे जाना चाहिए। और मनसा वचसा, इस तरह से प्रणाम किया जाता है। तो हस्ताभ्याम, हाथ आगे जाए लोटा हुआ। एक बार एक साधु प्रवचन कर रहे थे कि अगर तुम सोकर प्रणाम नहीं कर सकते हो तो दंडवत भी करो, मतलब दंडा जैसे खड़ा रहता है ऐसे करो। तो ये तो मनमाना अर्थ कर रहे थे कि दंडवत ऐसे करो, ऐसे नहीं किया जाता। जमीन पर सोकर, भूमि काय, भूमि पर, पृथ्वी पर लोट कर प्रणाम किया जाता है। तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए, वाणी से कुछ बोलना चाहिए, नेत्र से भगवान को पहले देखे और मन से सोचे। ये तीन प्रणाम ये हुआ, मनसा वचसा और नेत्राभ्याम। इसके बाद है हस्ताभ्याम, ये चार प्रणाम हुए। और सिरसा, सिर जमीन पर टिका रहना चाहिए, ये पांचों हुआ ना, ठीक इनके। और वक्षसा, और छाती जमीन पर रहना चाहिए। जानुभ्याम और पादाभ्याम, इस तरह से 8 प्रकार से प्रणाम किया जाता है दंडवत। पर जो भी हो, आज के युग में कोई न भी करे, केवल वचन से भी कह दे कि दंडवत, तो मान ही लेना चाहिए, ठीक है कोई बात दंडवत दंडवत, ठीक है ठीक। अब तो कहने की चीज रह गई दंडवत प्रणाम करने में बहुत दिक्कत भी है, किसी के घुटने में दर्द है तो कहीं दर्द है क्या है, बहुत कठिन हो गया। यदि स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम रिकमेंडेड नहीं है, उनको धनुष प्रणाम करना चाहिए। दंड जैसे नहीं, धनुष जैसा, धनुष जैसे झुकता है तो झुक करके प्रणाम करना चाहिए, या उसको पंचांग प्रणाम भी कहते हैं शास्त्रों में। पुरुष अष्टांग प्रणाम कर, लेकिन माता अदिति इतना बिहवल थे, वो पूरा लोट करके भगवान को प्रणाम की, दंडवत प्रीति बिहवला। अच्छा, प्रेम के कारण उसे इस ध्यान नहीं रहा कि ऐसे प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रीति बिहवला। सत्थाय बद्धांजलि वेदितुम, तो सा उत्थाय, आप सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसके बाद खड़ी हुई, भगवान को प्रणाम करके खड़ी हुई। सुत्थाय बंधा जलरी डितुम स्थिता, नुत्से है आनंद जला कुलेक्षणा। इसके बाद उठी भगवान की स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वो उठी, गुण गाने के लिए। सा उत्थाय, वह अदिति उत्थाय, उठ करके बद्धांजलि, हाथों को जोड़ ली। और किस लिए, ईडी तुम, भगवान का गुण गाने के लिए, स्तुति करने के लिए। लेकिन स्थिता, लेकिन अस्थित रह गई, खड़ी हुई ये आनंद जला कुलक्षण भगवान के प्रति इतना प्रेम था और इतना आनंद हुआ उनके दर्शन से कि उसके आंखों में आनंद के आंसू भर रहे थे और नहीं चाहते थे कि ये आंसू निकले, क्योंकि भगवान को देखने में बाधक हो रहे थे आंसू, तो वो चाहती नहीं थी। ऐसे खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहा है, बभू व तुष्णिम पुलका कुलाकृति तद्दर्शनात्युत्सव गात्र बेपथ। वो खड़ी है, हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बह रहा है, भगवान के बारे में कुछ बोल नहीं सकी। बभू व तुष्णिम, तुष्णिम मैंने चुपचाप रह गई। पुलका कुलाकृति, उसका सारा शरीर रोमांच से विभूषित था। पुलक आकृति शरीर जो था वो पुलक से व्याप्त था। और अति उत्सव गात्र बेपथ, अतसे आनंद के कारण भगवान को देख करके, अतसे आनंद के कारण उसका शरीर कांपने लगा। ये प्रेम के विकार है। तो स्वेद होना, पुलक होना, अश्रु निकलना, कपकपी होना, यह प्रेम का विकार है, अष्ट सात्विक विकार में से विकार है। तो माता अदिति इस तरह से थी और वो बोल नहीं पाई भगवान के सामने। कुछ देर के बाद प्रीत्या शनैः गदगदया गिरा हरिम तुष्टावसा देव्यदिति कुरुद्वह उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमा पतिम यज्ञपति जगतपति। लगता है जैसे सुखदेव गोस्वामी वीडियोग्राफी ले रहे हैं, माता अदिति की क्या दशा है पूरा प्रवर्णन कर रहे हैं। प्रीत्या शनैः गदगदया गिरा, ऐसे प्रेम के कारण चाहती थी कृष्ण के विषय में बोलना, विष्णु के विषय में बोलना चाहती थी, क्योंकि यह जीव का स्वभाव है, वह कुछ बोलेगा तो भगवान के गुणों को बोलना उसका स्वभाव है, बोलना ही चाहिए, और इससे जीव का बहुत बड़ा मंगल होता है, माया बंधन कटता है। तो माता अदिति में स्वाभाविक आ रही थी कि मैं इनका वर्णन करूं, इनके सौंदर्य का, दया का, प्रभाव का, ऐश्वर्य का, सबका वर्णन करूं। ये पहले तो नहीं वर्णन कर सके, तो अब धीरे धीरे सुनाई गदगदया गिरा, गदगद वाणी से तुष्टावसा देव्यदिति कुरुद्वह हे कुरकुल शिरोमणि परीक्षित। वह धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोछी और गदगद वाणी से टूटे हुए स्वर में, साफ शब्द नहीं निकल रहा था प्रेम के कारण, भगवान हरि का स्तवन करने लगी, स्तुति करने लगी। सा अदिति, इस श्लोक में आप देखेंगे कि दो बार सा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्रीधर स्वामी प्रसाद जी लिखते हैं कि दो बार दो क्रियाओं के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह द्विरुक्ति दोष नहीं है। सा एक बार गदगद वाणी से स्तुति करने लगी, और उद्वीक्षति वह अपलक नेत्रों से भगवान के सौंदर्य को देख रही थी, ये अलग क्रिया है। देखना, स्तव करना एक क्रिया है और दूसरी क्रिया है भगवान को देखना, इसलिए दो बार सा शब्द का प्रयोग किया गया है। वह 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 अर्थात अतिशय भाग्यवती अदिति भगवान के सौंदर्य को देख रही है। उद्वीक्षति, उद का अर्थ होता है निष्पलक, देखना, आंख खोलकर बिल्कुल भगवान को नख से सिख तक को देख रही है। जीवन में पहला यह अवसर था कि माता अदिति को भगवान का दर्शन हुआ था। देखिए पयोव्रत की महिमा, भगवान का जप करना, भगवान के लिए आहुति देना, स्तुति करना और चिंतन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये सब इतना बलवान साधन है कि तत्काल भगवान को प्रकट कर दिया। और मनोरथ की पूर्ति तो वो तो अनुसंगिक फल है। वास्तव में अनुसंगिक अर्थ है कि जैसे कोई व्यक्ति चावल पैदा करता है तो चावल तो उसे मिलता है, उसके साथ साथ पुआल, उसका डंठल जो है वो भी हो जाता है। भगवान इतने कृपालु हैं, देखिए 12 दिन के भजन से तुरंत प्रकट हो गए माता अदिति के सामने, ये स्वभाव है भगवान का। 12 दिन में प्रकट हो गए। कल कथा हो रही थी, भगवान शिव तब प्रकट हुए जब वो बेचारा अपनी गर्दन काटने जा रहा था, वृकासुर है ना, अगर नहीं काटता तो इतना जल्दी वो प्रकट होने वाले नहीं थे, और प्रकट होकर के भी उसको खत्म कर दिए वृकासुर को। बल्कि नहीं भजन किया होता तो अभी जीता जागता, लेकिन 6-7 दिन भजन किया मर गया, ये दशा होती है। राम के बिना, भगवान के बिना, ऐसे हमारे यहां कहते हैं कि राम बिना हित दूसर नाही, होइबो करिहन तो वैसन नाही। राम के अलावा कोई हित ऐसी नहीं है, अगर कोई होगा भी तो ऐसा नहीं होगा। भगवान कितने दयालु हैं, कितना स्नेह करते हैं, अनेक कामनाओं से भरी हुई माता अदिति को साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने तो नहीं सोचा कि ये स्त्री चाहती है कि असुर लोग मारे जाएं, उनकी स्त्रियां रोवे, ये हो, भगवान इस डार्क साइड पर विचार करते ही नहीं। वो तो देख रहे थे किस तरह से हमारा इसने जप किया, किस तरह से स्तुति किया, हवन किया, नियमों का पालन कर रही है, श्रद्धा है मेरे प्रति इसकी। ऐसी स्त्री के प्रति भगवान प्रकट हो गए। कितने ऋषि मुनि नाना प्रकार की तपस्या करते हैं, मर जाते हैं फिर भी दर्शन नहीं होता है, कई बार जन्म लेते हैं फिर भी दर्शन नहीं होते। 12 दिन में भगवत व्रत का पालन करने वाली माता आरती के सामने प्रकट हो गए। यह श्रीमद् भागवत है, ये प्रमाण शिरोमणि ग्रंथ है। भगवान भक्ति से प्रसन्न होकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। जब तक वे प्रकट नहीं हुए हैं तब तक भक्त भगवान को मंदिर में देखते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, हृदय में भी श्याम सुंदर छवि का ध्यान करते हैं, और इसके बाद तो वो साक्षात नेत्रों से देखेंगे ही, भगवान मिलेंगे। माता अदिति प्रमाण है। तो माता अदिति इस प्रकार भगवान को प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। कैसे देख रही थी कृष्ण को, उद्वीक्षति सा पिबती, वह भगवान को ऐसे देख रही थी कि लगता था कि वो महामधुर अमृत पी रही है। आंखों में इतनी लालसा थी भगवान को देखने की कि लगता था कि आंखें भगवान के रूप अमृत को पी रही है, देख नहीं रही है। पिबती व उद्विक्षति, पिबती व, लगता था कि पी रही है, इस तरह देख रही थी, पीते हुए देख रही थी। तो बहुत लालसा, किसको देख रही थी, रमापति यज्ञपति जगतपति, मतलब माता अदिति का यही भाव होता था कि यही लक्ष्मी जी के पति रमापति हैं, समस्त धन के स्वामी, समस्त धन के संपत्ति की स्वामिनी लक्ष्मी जी के भी ये पालक हैं, पति हैं, स्वामी हैं, रमापति यज्ञपति। और वास्तव में भगवान यज्ञपति हैं, वो ये रियलाइज कर रही है कि मैंने यज्ञ किया, पयोव्रत किया, और उसे के फल को भगवान ने दिया, प्रकट हो गए, तो यज्ञ के पालक हैं भगवान वास्तव में। यदि कोई यज्ञ करता है तो असुर उसमें विघ्न डालते हैं, लेकिन भगवान यज्ञपति हैं, पालन करते हैं यज्ञ का, बहुत प्रकार के कठिनाइयों से बचा लेते हैं और यज्ञ फल देते हैं। माता अदिति यही सोच रही है, रमापति यज्ञपति जगतपति, समस्त जीवों के पालक जगतपति, जगताम जीवा नाम पति, समस्त जीवों के यही पालक हैं, यही जन्मदाता हैं। ये सब भाव भगवान के प्रति हो रहा था, इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी माता अदिति के द्वारा, अदिति के द्वारा भगवान का दर्शन होने पर कहते हैं रमापति यज्ञपति जगतपति। वो माता अदिति के भावों का अनुवाद कर रहे हैं, जो जो अदिति सोच रही है भगवान के प्रति उन्हीं शब्दों का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी करते हैं। उद्विक्षति सा पिबती व चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपति, यह है भगवान की कथा। भगवान रमापति हैं, जगतपति हैं, यज्ञपति। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने प्रारंभिक मंगलाचरण में भागवत कहने कहते समय वो कई शब्द का प्रयोग किए हैं, श्रीयपतिर यज्ञपतिर धरापतिर धियामपतिर लोकपतिर, इस तरह से कई बार कहते हैं भगवान श्रीपति हैं, यज्ञपति हैं, इस पृथ्वी के पति हैं, समस्त जीवों के पति हैं। पति मतलब पाति इति पति, जो पालन करता, जो पालन करे उसको पति कहते हैं। पति गतिश्चांधक वृष्ण सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। तो विशेष करके कहते हैं कि अंधक वंश जादवों के वे पालक हैं, रक्षक हैं, द्वारका में रहते हैं, ऐसे प्रभु हमारी गति हो, मतलब हमारा जीवन उनमें ही समर्पित है, वही हमारे सब कुछ हैं। अपने मंगलाचरण की वंदना में श्रील सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक कहे, यहाँ पर भी कह रहे रमापतिम जगपतिम जगतपतिम, ये सब शब्द अन्य किसी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, किसी के लिए नहीं, न ब्रह्मा जी के लिए न शिव जी के लिए, कोई रमापति नहीं है, कोई जगपति नहीं है और कोई जगतपति नहीं, ये सब शब्द स्पेशल केवल भगवान के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो माता अदिति भगवान से की स्तुति कर रही है, जग्येश जग्य पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रिजनोपशमो दयाद्य समन क्रधीश भगवन असि दीननाथ। माता अति प्रार्थना करे, सबसे पहले भगवान को कहते हैं जग्गेश, जग्नेश कह रहे, ये जो गुजरात में जिग्नेश शब्द नाम दिया जाता है किसी को, वो जिग्नेश नहीं है, जग्नेश कह सकते हैं, मतलब जग्गेश। जग्गेश का मतलब है यज्ञ का फल देने वाला, हे प्रभु। सबसे पहले माता अति के मुख से जग्गेश निकल रहा है कि हमारे यज्ञ का, हमारे पयोव्रत का फल आपने दिया, प्रकट हो गए। वास्तव में भगवान जग्गेश हैं। कोई भी यज्ञ किया जाता है, भगवान की आराधना कीर्तन कथा आदि, तो उसके उसका फल भगवान देते हैं, और फल क्या देते हैं, स्वयं प्रकट हो गए। 12 दिन यज्ञ करने पर भगवान प्रकट है। जग्गेश हे हमारे इस यज्ञ के ईश्वर, चाहे समस्त यज्ञों के दाता है, फल दाता है और भोक्ता भी है। भोक्तारम यज्ञ तपस्या, यज्ञ और तपस्याओं का मैं भोक्ता हूँ, समस्त लोगों का, जीवों का मैं महा ईश्वर हूँ और समस्त जीवों का मैं सुहृद हूँ। इन तीन बातों को यदि कोई जान लेता है तो तत्काल उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है, और शांति इसी कारण से है कि कृष्ण को इन तीन रूपों में हम लोग जान नहीं पाते। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। इस संसार में लोग समझते हैं कि हमारे परिवार हमारा सुहृद है, हमारा भाई या हमारा अपना आदमी कोई बहुत ऊंचे पद पर है वो हमारा सुहृद है, हमारा देश हमारा सुहृद है, ये देवता हमारे सुहृद हैं, ये साधु या गुरु हमारे सुहृद हैं, लेकिन वास्तविक सुहृद कृष्ण है, भगवान। इसीलिए भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। तो सबसे पहले माता अदिति भगवान के लिए जग्गेश शब्द बोल रही है, हे यज्ञ फलदाता, जग्गेश यज्ञ पुरुष। इस एक श्लोक में माता अदिति भगवान को 10 संबोधन कर रही है, संबोधन कर रही है डायरेक्ट। और यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष का अर्थ है यज्ञ के प्रतिपाद्य आराध, अर्थात आपके लिए यज्ञ किया जाता है, आपको संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किया जाता है, उनको यज्ञ पुरुष कहते हैं। जजनी है यज्ञ वही विष्णु। तो हे यज्ञ का फल देने वाले और हे यज्ञ के द्वारा आराध्य, मैं आपको नमस्कार करती हूं, ये सब जगह लगेगा। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा च्युत अच्युत, ये तीसरा संबोधन है, अच्युत जिनके भक्त कभी च्युत नहीं होते हैं, तो इसके द्वारा वह अपने हृदय के भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु आपके भक्त स्वर्ग से च्युत हो गए हैं, उनको पुनः स्वर्गे स्थापय इति भाव, उनको फिर से स्वर्ग में स्थापित कीजिए। इंद्र आदि आपके भक्त च्युत हो गए और आप अच्युत हैं। अच्युत शब्द का अर्थ किया गया है कि महाप्रलय में भी जिनके भक्त च्युत नहीं होते हैं, सुख से अपने स्वरूप से आनंद से, तो उनको अच्युत कहते हैं। तो इसके द्वारा यह ध्वनित किया जा रहा है, चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि आप अपने भक्तों को, हमारे पुत्रों को जो स्वर्ग से च्युत हो गए हैं, उनको फिर से स्थापित कीजिए स्वर्ग में। कह नहीं रहे पूरा खोल करके, लेकिन भाव ये तीर्थपाद चौथा संबोधन है। हे तीर्थपाद, पाद का अर्थ चरण, तीर्थ माने गंगा जी आदि नदी, गंगा जी आपके चरणों से निकलती हैं, आप तीर्थपाद है। अथवा मन से भी कोई आपके चरण कमल का ध्यान करे तो उस व्यक्ति के सारे पाप ताप अपराध ध्वस्त हो जाते हैं, वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। तो सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान का ध्यान करना, भगवान का चरण कमल ध्यान करना, उनकी पूजा करना, उनको तीर्थपाद कर। तीर्थ का अर्थ है तारने वाला साधन। तारने का मतलब है पाप अपराध पातक उपातक जितनी भी त्रुटियां हैं सबसे मुक्त कर देता है, जीव को शुद्ध कर देता है भगवान का चरण कमल। और भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण गंगा जी का यही प्रभाव, खास करके गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं और इस विश्व ब्रह्मांड में गंगा जी का जो पानी है वो वास्तव में स्पिरिचुअल पानी है, स्पिरिचुअल वाटर है, भगवान के चरणों को धो करके निकल रहा है। स्पिरिचुअल वैसे ही स्पिरिचुअल वाटर है कर्णोदक समुद्र कर्णाडो का, और उस पर भगवान वामन देव के चरण को धो करके गंगा जी आती है। इसलिए गंगा जी सबसे अधिक पवित्र है, भगवान के चरणों के प्रभाव को लेकर के बहती है। गंगा जी का नाम भी बोला जाता है जीव पवित्र हो जाता है, ध्यान करे और फिर स्नान और आचमन करे तब तो कहना ही क्या, तीर्थपाद। इसके द्वारा माता अदिति के मुख कमल से भगवान की भावी लीला सूचित हो रही है, आगे आने वाली। इसी अवतार में गंगा जी की उत्पत्ति हुई है वामन देव, इसका मतलब है कि अपने आप सरस्वती अर्थ निकाल रही है, वाणी पर बैठी हुई है कि आप त्रिविक्रम बन करके जब नापेंगे विश्व ब्रह्मांड को तो आपके चरण कमल ब्रह्मांड के कवर को फाड़ेंगे और कर्णाडव जल गिरेगा आपके चरणों पर और उस वही चरण कमल पखार करके गंगा जी बनेंगे। तीर्थपाद तीर्थ श्रव, ये छठा चौथ पद कौन विशेषण जो भी हो गिन लीजिए। तीर्थ श्रव, श्रव का अर्थ होता है जस कीर्ति, और तीर्थ का अर्थ तीर्थ, आपकी कीर्ति संसार के समस्त जीवों को तारने वाली है, शुद्ध करने वाली है। केवल आपके विषय में सुना जाए तो जीव परम पावन हो जाता है, ऐसा कोई प्रभाव किसी में कहीं नहीं देखा जा सकता है। क्या कोई दवा ऐसी आप सुने हैं कि उसको नाम सुना जाए रोग ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कि है कुछ कुछ हो सकता है शब्द हो ऐसा, लेकिन सारा पाप ताप जमराज का बंधन कर्म बंधन सब ध्वस्त हो जाए तो जीव को आपका जस आपकी कथा परम पावन कर देती है। तीर्थ श्रव, जिनका श्रवण ही तीर्थ है, भगवान के विषय में बोलना अपने को सब तरह से शुद्ध करना सुनना। केवल व्यक्ति सुने भगवान का नाम गुण लीला तो वह बिल्कुल पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं और कर्म बंधन ध्वस्त हो जाते हैं केवल सुनने से। अच्छा मान लीजिए अगर कोई कहे कि हम भगवान के गुणों को समझ नहीं पाए हैं, मान लीजिए कोई कथा कह रहा है नहीं समझ पाए तो कहते हैं श्रवण, माता अदिति कहते हैं श्रवण मंगल नाम धेय, आपका केवल नाम कोई सुने तो उसका महामंगल होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रवण मंगल नाम धेय। कितने संबोधन हुए अब तक, जज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद तीर्थ।